ये गुण भूलेगा नहीं, ये याद करेगा कि सचमुच ये तो गलत धोखा हो रहा हमारे साथ, कहते वहां भी तुझे छुटवा लाऊंगा और फिर मनुष्य शरीर देगा और तुरंत ही फिर आपकी फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए जिसने द्वितीय नाम नहीं, तीसरा नाम नहीं मिला और प्राण त्याग भी गया, तो वो शीघ्र ही तुरंत ही फिर मनुष्य शरीर पाकर के और नए सिरे से अब फिर जुड़ जाएगा। के ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष लगेंगे। 3 वर्ष के बालक नाम ले लेते हम, प्रथम मंत्र दे देते और 4-5 साल में और फिर वो नए सिरे तो भक्ति करके बेड़ा पार कर जाए। इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो असंख्य जन्म हो गया, उन्हें मरते और जन्म त्याने असंख्य योग, ये पहली बार क्रिया नहीं हो रही। चलो अभी तक तो हमें ज्ञान नहीं था, जब तक सत्संग ठीक ना मिला करते हमने सोचा करते ये मरना नहीं है, जीना बालक पाड़ दिए फिर बेसिक मर जाए, नहीं ये क्रिया तो संघ बार हो दी। परंतु अब के हम इसको सूझबूझ से प्रयोग करेंगे इस समय को और संतों के बताए मार्ग के अनुसार अनुसरण करके अपना जीवन सफल करेंगे, तभी हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो क्या बता, जैसे दूसरा तीसरा नाम नहीं भी मिला और आप प्राण भी त्याग गए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इतना समय नहीं लेना चाहिए आपने, वैसे तो रूल ये है परमात्मा का के काल करे सो आज करो भाई, आज करे तो अब पल में पर ले हो जाएगी, फेर करांगे कब। ये दूसरा जन्म की उम्मीद स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए। ये तो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि इसलिए आप इतने योग्य नहीं हो पा रहे हो, जैसा दास देख रहा है कि जितना प्रयत्न जितना ज्ञान दिया जा रहा है इसकी तुलनात्मक अभी इम्प्रूवमेंट कम है। और दृष्टिकोण से तो बहुत ज्यादा अपना बदलाव भी है, श्रद्धा भी बढ़ रही है, लेकिन जितना होना चाहिए इतना नहीं हो पा रहा। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी अपना ज्ञान ये थोड़े से कुछ क्षेत्र में है और इसमें विरोधी ज्यादा है। आप यहाँ से उपदेश लेकर जाते हो तो 10 आदमी 20 आदमी गांव के नौकेंगे, कित फंस गया जाके, अरे क्यों पाखंडी का फंस गया, वो तो देवता की पूजा भी छुटवा देता है, पितरों की भी पूजा छुटवा, पता बात बिगड़ जाएगी, नाश हो गया कैसे करा करता उसने। तो ऐसे आपको वो दृढ़ होन नहीं दे रहे और जब तक हम पक्का नहीं हो गए तब तक ये परमात्मा पूरी रजा नहीं बख्श पाता, ये नियम है ईश्वर का। तो कुछ दिनों में आप देख लेना फिर समर्थक हो जाएंगे। हर इंसान नो कहेगा भाई ज्ञान है तो वो है ना धरती पर कितने ज्ञान नहीं, और भगवान है तो कबीर साहब है ना पृथ्वी पर कोई भगवान नहीं। तो फिर आपका ये जो दोगलापन खत्म हो जाएगा, आम व्यक्ति का हो जाएगा, फिर एकदम श्रद्धा सीधी जुड़ जाएगी। तो वो समय भी ज्यादा नहीं लगेगा, आने वाला है, घना टाइम नहीं लगेगा। तो फिर जैसे ही हमने राम और कृष्ण के प्रति कोई कहता था ये भगवान है, हाँ भाई भगवान ना पड़े हैं, श्री कृष्ण भाई कमाल है, उन्हें नू कर दिया, पूतना मार दिया, हाँ भाई कति रोग काट दिया, तो ये उनके गुण हमने आवश्यकता से अधिक सुन रखे थे और कोई नो ऑब्जेक्शन था, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं था कि नहीं ऐसा नहीं थे, ये भगवान नहीं है, वो भी प्रभु है, परंतु वो किस स्तर के हैं ये ज्ञान नहीं था। अब कुछ दिनों में कबीर परमात्मा का आपके हृदय में इतना प्यार हो जाएगा, कोई भी नहीं कहे कबीर बंदी छोड़ो, बंदी छोड़ो है भगवान पड़े, अरे क्या बात है भगवान भूल रहे थे हम। तो ये जो अंदर से उमंग उसके प्रति आ रही है इसके नंबर बनते हैं और जो असरदा जरा सी होगी तो सारे कैंसिल हो जाते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम आपका दोस्त नहीं दास मान रहा, आप तो कमाल की कमाल कर रखे आपने, तो आपने तो मीराबाई जैसा संघर्ष कर रखा। सत्कर बता दूं, एक गांव एक घर में एक आदमी नाम ले हर 5 ना उसने नौ कहने वाले तू कित फंस गया हैं, और तुम तो देवता छोड़ दिए, बता तेने यू कहां से नई बीमारी ला दी, और आप फिर भी दृढ़ रहते हो। और फिर एक परिवार लग गया तो गांव के आस पड़ोस के सारे अपोजिट नौ के ले बता, और वो अपन आपके जो भूत प्रेत तंग करते थे वो देवी देवता वो सारे पड़ोसियां के चले जा, क्योंकि अपन मच्छरदानी ला ली तो हमारे तो मच्छर लड़े नहीं, वो दूसरे के लड़ेंगे जो बगैर मच्छरदानी ना ही सो रहा है, तो वो आपको फिर नो परेशान करते हैं कि आपने हमारा भूत बुढ़वा दिए, ये और साका हो जाए जान कि तुमने हमारा भूत मारे करवा दिया कि मैं, हम नहीं करवाते ना, हम करना जानते, हम तो अपना अपना प्रबंध कर लिया, तुम भी ले लो मच्छरदानी आ जाओ हमारे साथ में आपके बाज जाएंगे। तो हम ये और समस्या के कई बहन भाई बताओ हमारे साथ पड़ोसी लड़े रोज, जो कि थारे भूत मारा है हरा हमके एक ने जबकि कुआं पड़ो भूत हमने तो अपना प्रबंध किया है, हम भगवान के चरणों में आगे, भगवान लंबा लठ रखे, मारे नहीं बढ़ सकते भूत। हाँ, ये भूत जब तक रहेंगे आपके, तुम आपको न प्यार करोगे। तो इस करके हमने पूरी ऐसा और जितनी भी साधनाओं से बिल्कुल दूर हट जाना होगा एक कदम, और पूर्ण परमात्मा में पूरी श्रद्धा लगा देंगे, फिर यो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा और उन आपके पितरों की प्रेतों की भी मुक्ति कर देगा। वो फिर अपने किसी दुनिया में जाओ, वो चले जाएंगे, आपको परेशान नहीं कर सकता कोई भी। सतगुरु के चरणों में आने के बाद कहते हैं धर्मराज फिर कैसा, इसके शरण माने का धर्मराज का डर नहीं। कहते हैं आदरणीय गरीबदास साहेब की आत्मा को लेकर के परमेश्वर कबीर साहेब धर्मराज के दरबार में लेकर गए, जो यहाँ का न्यायाधीश है, सुप्रीम जज है यहाँ का। तो वहां जाते ही न्यायाधीश ने कुर्सी त्याग दी, खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, और परमात्मा उसको अपनी समर्थता गरीबदास जी महाराज को दिखा रहे हैं कि मैं क्या हूं, कदे दुनिया निराजुल आया सोच रही हो मुझे। तो क्या दिखाते हैं कि धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा है और वो परमात्मा उसके ऊपर उसको अपना आदेश सुना रहे हैं। जैसे उच्च अधिकारी किसी छोटे अधिकारी के ऑफिस में जाता है तो औपचारिक रूप से शिष्टाचार के नाते प्रणाम करता है, खड़ा हो जाता है, कुर्सी त्याग देता है, बैठो जनाब, और वो अपना आदेश सुनाता है, उसकी उसको जो है ना डांट मारता है, और वो फिर भी हाथ जोड़कर कहता जी सर। तो ऐसे धर्मराज के दरबार में परमेश्वर जब पहुंचे, हाथ जोड़कर धर्मराज खड़ा हो गया, और कहते धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस ने तू पकड़िए मत कजा के, डांट मार के कहा। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, और आपके हंस ने छेड़ू नहीं, मैंने दो ही लाख करोड़ है परमात्मा, लाख दुआई, आपके हंस ने मैं नहीं पकड़ना। फिर क्या कहता है कि हे प्रभु, आपकी शरण में आने से पहले जो इसके पाप और पुण्य के जो अकाउंट है वो मेरे खाते में है प्रभु, उनके अनुसार तो मैंने इनको अपना वो देना पड़ेगा, दुख या सुख का दंड। तो परमात्मा ने कहा करम बरम ब्रह्मांडे के ये पल मैं कर दू ने से नष्ट कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश, के जो तेरे दरबार में आ भी जावा भूल चूक के, क्या कहते हैं कि भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, के गदा भूल भटक के और गफलत करके तेरे दरबार में आ गया, और उसने फिर याद आ गई, फंस गया मैं तो, हे भगवान हे बंदी छोड़े कबीर साहब बख्शियो। कहते हैं उसका अकाउंट भी मत लेना, मेरे पास भेज देना, करो हमारे पेश। और तो जाएंगे कहां, और तो विमान में बैठ कर जाएंगे, आखिरी सांस तक आप लगे रहे परमात्मा के चरणों में। ये सत्कर्मान बताता हूं मैं, कोई बालक नहीं, कोई स्वार्थ नहीं मुझे, इस परमात्मा को मैंने बहुत गहराई से जाना है। तो कहते आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जाएंगे जुड़े जान जंजीर, एक तो जहाज में बैठ कर जाएंगे परमात्मा की प्यारी आत्माएं, अरे क्या यम के दूत बांध के ले जाएंगे, मरना सभी ने पर मरने मरने में बहुत अंतर है। इस प्रकार जब हम पूर्ण रूप से अपने परमेश्वर पर आश्रित हो जाएंगे तब ये प्रभु आपके अपने बच्चे के पैरों के नीचे हाथ रखेगा। समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जा, आपके पास आपके जीवन रूपी सफर में जो पाप रूपी कर्मों जो वाले जो कांटे हैं परमात्मा झाड़ू देता चलेगा, मेरे बच्चे के मेरी बेटी के कितने कोई कष्ट ना आ जाए, ये सत्कर्म मान लेना। हम परमात्मा की तलाश इसीलिए क्या करते थे कि प्रभु एक बहुत सुखमय शक्ति है और हमारे ऊपर आने वाली आपदाओं को दूर करेगा, हमारे कोई कर्म भयंकर कष्ट होगा उसको भी रिमूव करेगा, हटाएगा प्रभु, इसलिए उसकी तलाश करते थे। इन संतों ने उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी, इन्हों का भाई कर्म का भोगता भोगना ही पड़ेगा। देखो भगवान श्री कृष्ण ने भोगा, श्री राम रूप में बाली मारा था उसका बदला श्री कृष्ण रूप में दे के देना पड़ा, भाई जब भगवानों ने भी कर्म भोगने पड़े तो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ले बेड़ा पार हो जाएगा, आगे भक्ति बढ़िया, नेक्स्ट जीवन तेरा बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब यहां परमात्मा का संविधान दूसरा है, ये इन भगवानों के लेवल के सतर का ज्ञान है, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म तक का और पूर्ण ब्रह्म का की शक्ति और वो विधान इनसे भिन्न है। वो परमात्मा कर्मों के घोर पापों को भी नष्ट कर देता है, वो प्रारब्ध को भी चेंज कर सकता है, वो समर्थ पावर, वो पूर्ण समर्थ शक्ति है। तो उसके उसकी वो तभी करेगा जब हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पण होकर करेंगे। जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया और कोई कहे किसी से ले भी कांटा नहीं, मेरे तो पैर दुख दर्द हो रहा है, वो कहे तेरे तो कांटा लग गया है और कांटा तो निकलेगा नहीं भाई, जूता पहन ले आगे कांटा तेरे नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, ये तो कांटा निकले और फिर वो जूता कभी भी ना निकाला उस सफर में, हे भगवान कहीं फेर ना लग जा। तो इसी प्रकार ये पाप रूपी कांटा निकले उस डर के से, फिर राम नाम का जूता पहना ये प्राणी, ये परमात्मा कहीं वह बिजली फेर ना गिर जा, वो भयंकर कष्ट फिर ना आ जा, इस डर से वो राम नाम का जूता यानी भक्ति करेगा, श्रद्धा होगी भगवान में और फिर कभी नहीं उतारेगा उस डर के मारे। तो ये पूर्ण परमात्मा कबीर अंगारी असी, कबीर परमात्मा जो पाप का शत्रु है, ये सर्वशक्तिमान है। कहते जब जो राजा से डर ये मट कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है भाई कुल के सतगुरु एक। तो इस प्रकार हमें जो अधूरी पढ़ाई पढ़ा के नादान संतों ने भक्ति से कति आस्था उठा दी, इसलिए तो लोग नास्तिक हो गए, चोरी करने लग गए, लुटेरे हो गए, और लाभ होना नहीं, जो पाप करते हैं वो पाप भोगने पड़ते हैं और पैसा वो रहना नहीं। किसी ने मान लिया 2 लाख रुपए की हेरा फेरी कर ली एक वर्ष में, एक बालक बीमार हो गया 4 लाख लग गए, या कोई पशु बिगड़ गया, या कोई फैक्ट्री गए ताला लग गया, तो वो पाप कमाए थे वो तो ज्यों के त्यों रखे और वो पैसा रहा नहीं, क्योंकि भाग्य से ज्यादा प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता, और कर लेगा तो वो रह को ना, और फिर वो कष्ट और भोगने बाकी रह गए। वो पाप तो जो पैसा था वो गया और वो पाप फिर भी आपके बैलेंस है, वो अगले जन्म में भोगने होंगे। तो जब हम इस भगवान से के संविधान से प्रीतित हो जाएंगे और फिर इसे राहत मिलेगी, फिर हम पाप कर नहीं सकते, फिर हम दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, लूट नहीं सकते, क्योंकि हमें डर लगेगा और जो रिक्वायरमेंट होगी परमात्मा पूरी करेगा। ये सत्कर्म मान लेना मालिक दूर नहीं है, अब विश्वास करके देखो इस परमेश्वर पे। दास ने सैकड़ों बार आजमाया इस भगवान को, आज रोना आता है क्योंकि हमें यकीन नहीं रहा करता सचमुच भगवान ऐसा कर देगा। सुनते थे कि करता था, ध्रुव की भी सुनते थे, प्रहलाद की भी, मीराबाई की भी सुनते थे, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि सचमुच प्रभु अब भी कर देगा। कारण क्या था कि हमें उस कनेक्शन नहीं मिला था वो पावर का, हमने लटके तार बांधने बैठे थे, वो संत मिले और कनेक्शन दे रखे थे बढ़िया, उनके पास पावर से, वो खुद कनेक्टेड नहीं थे परमात्मा से, उस पावर से संबंधित नहीं थे, वो योग युक्त नहीं थे और वो कहते थे हम योग युक्त, इसलिए वो कार्य हमारे नहीं हो रहे थे। ऐसरदा होगी भगवान में, इसलिए देख कितना बुरा हाल हो गया, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, भाई बहन का प्यार नहीं, रिश्तेदारी का नाता ठीक रहा नहीं, क्योंकि लालच लोभ बढ़ गया, और लालच लोभ ये पूरा भी ना होता, ये पूरा भी नहीं होता इन तरीकों से, बल्कि अशांति बढ़ गई, मन मुटाव बढ़ गए, और परमात्मा के चरणों में आकर देखो आपकी हर तरफ से रक्षा करेंगे, आपके घर में भी वृद्धि होगी, बच्चों की भी सुरक्षा, आपका हर तरह से जो है ना अड़े हुए काम को भी परमात्मा छिन्न में दूर कर दे। 12 गांवों की पंचायत फैसला नहीं कर सकती है, 2 मिनट में कर दे, सबकी बुद्धि भगवान के हाथ में होती है, सब सारे राजा तक भी परमात्मा के बच्चे होते हैं ना, मेरा कब्रें पैदा कर दे और के करवा दे उसके हाथ में, जाओ वे हो गए ठीक। तो ऐसे ही परमात्मा ही इसीलिए तलाश ईश्वर की करते हैं, हर काम को कर सकता है परमात्मा, हमारी पल पल पर मदद करता है, हर पॉइंट पे मदद करता है, हमारे कष्ट को निवारण करता है, चाहे किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे कोई राज संबंधी है, चाहे कोई मुकदमेबाजी में है। एक समय की बात है, गरीबदास साहेब जी कबीर परमात्मा के सीधे से हुए थे, हलालपुर गांव में उनका एक शिष्य था, सोरे का काम किया करता, सोरा काढ़ा करता। गरीबदास साहब जी शरीर छोड़ गए और उनके ऊपर कोई मुकदमा बन गया, 302 का कत्ल का मुकदमा बन गया। पिता पुत्र दोनों अरेस्ट कर लिए, दोनों ने उपदेश ले रखा था। अब सारी गवाही होगी, फैसले की तारीख आगी, गवाही उनके विरुद्ध होगी और पक्का हो गया कि तुम्हें फांसी की सजा पक्की होगी। उनके वकील ने भी कह दिया जी अब तो बचे भरोसा है। जिस दिन मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाना था उस दिन वो पुत्र रोने लग जाता, पिताजी आज गुरुजी होते, आज गरीबदास साहेब जी होते तो हमें आज हमें फांसी नहीं लगती। अब वो पुत्र, पिता बोला बेटा विश्वास रख अपने भगवान पे, और कोई बात नहीं जब उनके चरणों में भी फांसी लगनी है तो बेटा लगन दे, उनके चरणों में चलेंगे, कोई बात ना, चिंता ना करे, जो उसकी रजा है उसकी मौज। तो क्या कहते हैं कि वहां मजिस्ट्रेट के दरबार में जब वो पहुंचे, दोनों कटघड़े में खड़े कर रखे थे और सामने गरीबदास साहेब परमात्मा उस मजिस्ट्रेट के पीछे जैसे बाहर ऊपर खड़े हर तेजों में उसके चक्कर घूम रहा तेज परमात्मा के, एकदम दोनों ने ऐसे दंडवत प्रणाम किया वहीं उस कटघड़े में अपने मुंदे पड़के और प्रणाम करा अपने भगवान ते, बंदी छोड़ आगे पिताजी, वह खड़े बंदी छोड़, कहा बेटा ये खड़े है बंदी छोड़, बड़ी दया करिए मेरे दाता, 2 सेकंड के बाद अंतर ध्यान होंगे। मजिस्ट्रेट ने सोच रहा तेरे तो डरते प्रणाम करे, माफी मांगे, क्षमा कर दो, और मजिस्ट्रेट लिख रहा है फांसी की सजा आज ही, यानी फांसी तुझे सजाए मौत लिख दी, और कहा रीडर सुना दे इनको। रीडर पढ़कर सुना रहा है कि आपको बरी किया जाता है। मजिस्ट्रेट कहता तेरा दिमाग खराब है क्या, मुझे दे। मजिस्ट्रेट ने पढ़ा से सोचिए तो बरी लिखा, कागज पाट दिया, फिर लिखा, फिर उसको दिया कि अब जब उसने देखा फिर वही पढ़ा कि बरी तुम दोनों को भाई इज्जत बरी किया जाता है। मजिस्ट्रेट बोला तू क्या कह रहा है, फिर देखा वो सचमुच, फिर तीसरी बार फिर लिखा उसके लिखी उसने कि फांसी की सजा दी जाए, उसके सामने अक्षर चेंज हो गए कि इसको बरी किया जाए। मजिस्ट्रेट ने वही कलम तोड़ दी, भाई जब तुमने भगवान बचा रहा है तो मैं कौन मारने वाला हूं। फिर उन्होंने पूछा मजिस्ट्रेट ने कि तुम किसकी शरण हो, किस भगवान की भक्ति करते हो, तो उन्होंने कहा कबीर भगवान की भक्ति करते हैं, और हमारे गुरु जी हमारे सामने आपके पीछे आकर खड़े हो गए थे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मजिस्ट्रेट ने उसी समय रिजाइन लिख दिया अपना और जंगलों में चला गया, अभी भगवान नहीं तलाश करेंगे मेरे सामने, मैं फांसी दे रहा हूं, भगवान मेरे सामने अक्षर चेंज करा। तो उन दोनों को बरी कर दिया भगवान ने। तो ये जमजो राजा से डरे ये मिट कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। अब कहने का भाव है कि ठीक है मजिस्ट्रेट बेचारे ने नौकरी भी त्याग दी और जंगलों में भी चला गया, संत ना मिला तो डले डोकर फिर मर जाएगा। तो जब तक हमें पूर्ण संत नहीं मिलेगा यह जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। अब देखो सेक्रीफाइस करने वालों की, राज त्याग जाने वालों की, परमात्मा के लिए दिन रात लगे रहने हजारों वर्षों तक शरीर की परवाह ना करने वालों की कति कमी नहीं। रावण जैसे महापुरुष ने अपना सिर भी काट कर चढ़ा दिया, लेकिन उस नादान संत ने उसको गलत मार्गदर्शन कर दिया और राक्षस कहला गया, वो दुष्ट आत्मा हो गया। अगर वो ये ज्ञान आज वाला उस रावण में मिल जाता तो वो जहाज में बैठ कर जाता और महापुरुषों में नाम होता। उस नादान संत ने जिसने वो नीम अकीम भगवान शिव जी को सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज सब वेदों में इसी का वर्णन है, ऐसा करके गुमराह कर दिया और पूर्ण परमात्मा मानकर शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और उस रावण ने भी दिन रात एक कर दिया। आखिर में क्या मैं बना, राक्षस बना और कुत्ते वाली मौत मरिया। अब इसलिए परमात्मा कहते हैं कि समझा है तो सर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। एक ये कोई समय है कबीर परमात्मा बिना और इस पूरे प्रोसीजर जो आपको मिला है इस मंत्र के बिना और इस मंत्र को देने वाला भी अधिकारी हो। वैसे तो चोर बतेरे हो जाएंगे इस ज्ञान में, चुरा का गुरु बनने वालों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि काल ने तो अपना डुमडमा बराबर जचाना है, लेकिन उनसे लाभ कति नहीं होगा। और यही कारण होगा कि हम मार खा जाते हैं, चाहे तो इस जन्म में कर लो ये सूत बैठ गया, नहीं फिर कभी युगों पर्यंत तो किसी युग में कभी बात बनेगी। तब तक पशु भी पक्षी भी इस अब की हुई पुण्य कमाई को स्वर्ग में भी महास्वर्ग में भी राजा भी पृथ्वीपति भी सारे धक्के खा लेंगे, और फिर भी इसी मंत्र से और फिर तय दिल से करके सतलोक जाए पीछा छूटेगा। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने कबीर परमेश्वर की महिमा को। अगम निगम को खोज ले तो बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज न ले तो बिन नाम बिगार। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज न ले तो बिन नाम बिगार। बिगार किसे कहते हैं? पहले ये पुलिस वाले जो क्या करते थे, इन थ्री व्हीलर वालों ने और जीप जाप वालों ने पकड़ दिए जाते थे और उन्हीं से तेल डलवाया करते और सुबह ले जाते, शाम में 11-12 बजे छोड़ते, इधर उधर इलाके में घुमाए जाया करते। तो फिर वो पूछते दूसरे भी, कल ना आया तू, क्या बात थी? वो कहा करता कि कल मैं बेगार में जा रहा था। बेगार का मतलब है परिश्रम तो गणाधिक है और पल्ले तो पैसे भी तेल के खुद लगावे और 54 एक इनकम नहीं, उसको बेगार कहा करें। तो परमात्मा कहते हैं कि थोड़ी बुद्धि तो काम ले भाई, अगर मान लीजिए तुझे सारी पृथ्वी का भी राजा बना दिया और ये सच्चा नाम पूर्ण संत से फिर नहीं मिला, तो ये पूरी पृथ्वी का राजा बनकर अपनी तो कमाई खोएगा, अपने ही पुण्यों की से तुझे राज मिलेगा और बिगाड़ करके जाओगा। बिगाड़ रात दिन पड़े नहीं राजा, कहीं भी कोई दिक्कत हो जाए भाग्या जा बेचारा। एक छोटा सा मुखिया अपने परिवार का कितना कष्ट उठाता है अपने परिवार के पोषण के लिए और पूरे राज्य का की व्यवस्था करने के लिए, राजा को दिन रात नींद नहीं आती। हमने वो ठाठम ठाठ दिखाई देता है पर उसको चैन एक पल की नहीं होती। क्या हो गया 2 घंटे की तो घूटी लागत मार देख लिया कि थोड़ी बहुत देर चैन होगी, नहीं तो उसको एक पल की चैन नहीं होती। तो कहते हैं उदय अस्त का भी जर राज मिला इस नाम बिना तो भी तेरी बेगार पीट कर चला गया, तेरा पल्ला कुछ नहीं, फिर गधा बन गया, कंगाल हो गया तू। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो भाई राम नाम धन होवे। नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांग भीखा, क्या हुआ छत्र की छाच लाये राजपाट भेली का। कितना निर्णायक ज्ञान देते हैं कि इस परमात्मा के इस वास्तविक नाम को लेकर चाहे तुझे देश निकाला भी लेना पड़ जाए, इस नाम ने मत छोड़ दिए। और वो राजा किसे काम का नहीं जिसके ऊपर छत्र की छाच ऊपर छत्र तान कर चलाया करते थे। कहते हैं दो एक दिल्ली का राज नहीं उस सच्चे नाम के सिमन करने वाले भक्त के। क्या बताते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, जैसे आज कोई करोड़पति है अरबपति है, ईव मृत्यु हो जाओ तो खाकपति है, कुछ भी कोई ना उसके पल्ले, पशु बनकर उस फैक्ट्री के पास भी नहीं आ सकता। तो अब ना कहते हैं कि सब जग निर्धना धनवंता ना को ए, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन भाई। इस प्रकार जब हमें इस पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी हो जाएगी, फिर हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जैसे हम किसी वस्तु के गुणों से परिचित हो जाते हैं, उस गुणों के कारण ही उसमें आकर्षण बनता है। अभी तक हम हनुमान जी के गुणों से परिचित थे, बचपन से जैसा ज्ञान हुआ तो उस पर आकर्षित हुए, उनका जो भी साधना थी वो प्रारंभ कर दी, अटल हो गए। अब हमने पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ तो वो भगवान बुरे नहीं लगते, लेकिन उनकी स्थिति से हम परिचित होंगे कि ये भगवान तो हैं, लेकिन ये आप भी जन्म मृत्यु में, ये स्वयं भी कर्म का भोग भोगेंगे, तो हमें इनसे पूर्ण सुख नहीं मिल सकता, लेकिन ये हमें बुरे भी नहीं लगते क्योंकि तीन लोग के ये मुखिया है। अब तब हम पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा तो हमें सारा संसार अपने भाई बंद नजर आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश बेशक हमारे मुखिया हैं यहाँ तीन लोग के, लेकिन हैं अपने ही जैसे, ये भी हमें अपने ही नजर आएंगे, वो दूसरे नहीं लगेंगे, ना कोई जाति दूसरी लगेगी, ना कोई मजहब दूसरा लगेगा, ना कोई कोई देश विदेश में हमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ये तो राजा ने अपनी रेखा बना ली, अपने अपनी धरती बांट ली और वहां ठीक है अपना बैठे हैं, अपना भक्ति करके अपने सतलोक चलना, जहाँ कोई बाउंड्री को ना, वहां कोई सच्चा खुला दरबार भगवान का, खुले भंडारे चल रहे हैं, वहां पर तेज पुंज के आहार, तेज पुंज के फल, तेज पुंज के दूध, तेज पुंज की खीर, तेज पुंज के सब ठाठम ठाठ, तेज पुंज में बहुत सुंदर अमृत आहार, जैसे यहाँ पांच तत्वों से बने हैं, फल है, पक्ष जो भी है, कनक है या दूध है, दही है, और वहां तेज पुंज के हैं ऐसे ही, लेकिन वो स्वादिष्ट, उनमें जो आनंद अमृत, अमृत कहते आनंद साहब है, भाई अमृत कैसा मीठा है, तो अंगूर के अमृत कैसे मीठे, वो इनसे ज्यादा स्वादिष्ट है अमृत, वो अमृत आहार है, यानी सब उस तत्व एक तत्व से बना हुआ, वहां पर आनंद में आहार है, मोहन भोजन है, सुंदर शरीर है, कभी मृत्यु नहीं हुए, कोई बीपी आई ना, लो हुए ना, जाड़ पुड़वाणी ना आंख पुड़वाणी, कुछ भी तक कोई ना बुढ़ापा, वहां बिल्कुल एक रस शरीर रहेगा, युवा शरीर रहता वहां पर अपना, कभी वृद्ध नहीं होते। तो ये बातें हमारे दृष्टि को ना क्यों ना दृष्टि, क्योंकि हम कंडे बोलिए। अब पहले कम से कम ये तो मानना करते ऊपर स्वर्ग है और वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश है, अभी महर्षि दयानंद जैसे इन ज्ञानहीनों ने कहता ऊपर कुछ नहीं है, ये कर्ण की बातें, कोई स्वर्ग नहीं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं। और ये अपने इतिहास बताते हैं कि अर्जुन जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, 13वां अज्ञातवास होना था, उसमें वो एक वर्ष जो 12वें वर्ष में वो वहां गया था इंद्र के लोक में, और वहां एक वर्ष रहा था, वहां उसने उर्वशी ने उसको श्राप दे दिया था, वह नपुंसक हुआ था और अपनी सिद्धि से आकाश में उड़कर चला गया था और फिर वापस आया था। और फिर तो और आज नो के ना ऊपर कुछ नहीं, आज दी बुद्धि तेनो खराब कर दी, कहते ऊपर है नहीं कोई, कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई वहां पर धर्मराज नहीं, झूठ बोलना है, तो यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, तो इनकी बुद्धि यहां तक मलिन होगी और इससे ऊपर चलने तैयार कोई ना। अब उस स्थिति को फिर प्राप्त कराना कि वहां सब कुछ है, पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, इंद्र का वो स्वर्ग भी है, ऊपर नरक भी है, वहां पर पितर लोक भी बने हुए हैं, जो जैसी क्रिया करके जाता है वहीं पहुंच जाता है, ये सभी सखीची ऊपर है। अब वहां तक पहुंचाना मुश्किल हो गया, इतना हमारा सारा काम बिगाड़ दिया, भक्ति का सारा स्टेटस खराब कर दिया, इन्होंने थ्योरी बदल दी, सारा सिद्धांत चेंज कर दिया, अब धीरे धीरे वहीं आना होगा जहां हमारे पूर्वज बताया करते थे, वो सही ज्ञान था, ये कलयुगी ऋषियों और इन महंतों संतों ने काम बिगाड़ दिया सारा। अब उस सत्र पर आने पर थोड़ा समय लगेगा और फिर देखना आनंददायक करेगा, आपकी आंखें खुली हों या बंद हों, आप देख सकोगे ऊपर के नजारों को, लेकिन उन नजारों में बात बिगड़ जाती है, वहां देखना नहीं चाहिए अपन को। कई कहते हैं कि आपने कुछ दिखाई देता अंदर, ध्यान लगाता हूँ, एक भक्त नाम दे रखा, वो पहले राधा स्वामी में 20 वर्ष रहा, वो कहने लगा जी कुछ थोड़ी बहुत देर में ध्यान लगाता हूँ। मैंने उसे पूछा कितने आपने 20 वर्ष ध्यान लगाया, दो दो तीन तीन घंटे उसमें के देखा, बस ये ऐसा है ना, अंदर से आनंद आता था, अंदर आवाजें आती थी, प्रकाश दिखता था, फिर उस प्रकाश दिखने से और आनंद आने से क्या लाभ हुआ, कई किसी शास्त्र में बता दे जहां ऐसा प्रमाण हो जिससे कुछ लाभ हुआ हो, लेना ऐसा प्रमाण तक गीता जी उठाकर देखो, उसमें सीधी बात कही है कि ओ एक नाम जाप करते करते अंतिम सांस तक भक्ति करता रहे, और जो जबरदस्ती इंद्रियों तीसरे में तीसरे जाए के 6 से 9 तक श्लोक में लिखा है ये जो हठ योग करके जबरदस्ती कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को जबरदस्ती रोकते हैं, तो ज्ञान इंद्री फिर भी ना रुकती, और हठ योग करके बैठने वाले मूर्ख होते हैं। और यदि तू हठ करके बैठन लायक गया कर्म त्याग के, तो तेरा गुजारा क्यों करोगा अर्जुन? ये तो मूर्खा के काम है। युद्ध भी कर, तू श्रमण भी कर, यही परमात्मा कहते हैं। कबीर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। कबीरा सुमरण सारे हैं और सकल जंजाल, आज अंत मत सो दिया दूजा देखा ख्याल। बाकी तो सब बनावटी है। कहता हूँ कई जात हूँ सुनता है सबको, भाई सुमरण से भला होएगा ना तो भला ना हो। अब जितने भी संतों के इतिहास पढ़े हैं या उन संतों से यहाँ बच्चे आए हैं उनके पीछा छुटवा के, वो क्या क्रिया बताते हैं? कहते हैं जी ऐसे कान बंद करके, आंख बंद करके और सांस रोककर जितनी देर रोक सके, फिर ध्यान दे अंदर सुना आवाज सी आती है, फिर ऐसे आंख दबा कर देखो लो पीड़ा पीड़ा लाल लाल सा देखी रोशनी हो मौज माज की, अरे तेरा गजब हो। चलना हमने, ये तो एक शरीर है, ये पिंड है, हमने इस पिंड, ये अंड एक ब्रह्मांड का व्यवस्था है, इस पिंड और अंड से भी हमने तो आगे जाना है। इसमें जो भी अगर आपने कोई चीज दिखाई देती है काल की है। दृष्टि पड़े सो फाना है ये धर अम्बर कैलाश, कृत्रिम बाजी झूठ है तुम सुरत समो श्वास। जहां तक भी ये तुम्हें दिखाई देगा ये काल का जाल है, ये झूठी बाजी है। और तुम सीधी सी बात, अपने श्वास में सुरत लाओ नाम सिमरन को। अब आप भी कर सकते हो, क्योंकि कई अनजान लोग बहका, तो इतना ज्ञान हर सत्संग में तो आप आ नहीं पाते, और हर सत्संग में एक ही प्रकार का ज्ञान भी नहीं दिया जाता। आप कई बार करके देखना, आंखें बंद करके नू ऐसे थोड़ी थोड़ी देर ऐसे, और फिर ऐसे दबा, ज्यादा नहीं दबाना, और फिर देखोगे अंदर से बिजली सी पाटती दिखेंगी आपने, और बहुत एकदम जैसे लाल लाल सा सफेद सफेद सा ऐसे अंदर से आने लग जाएगा प्रकाश। तो वो परमात्मा नहीं है, वो शरीर में रिफ्लेक्टेड प्रकाश है। जैसे परमात्मा का प्रकाश बताते हैं उसके शरीर का, कि एक करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, एक सूर्य एक रोमकूप का इतना तेज है, और अंदर जो थोड़ा बहुत प्रकाश हमें दिखता वो तो ऐसा दिखा जैसे सूर्य के सामने सूर्य धुंध पड़ती हो, और सूर्य ऊपर होता है और वो दिखता कती नहीं, और फिर भी रोशनी थोड़ी बहुत दिखे, तो वह रोशनी सूर्य नहीं है, वो तो एक बहुत बहुत डिम लाइट है। वो काम को नहीं, वो काम भी ना चल रहा, इतनी दूर कब ना दिखता उसमें, गाड़ी भी धीरे धीरे चलानी पड़ती है। तो परमात्मा कहते हैं प्रेम की पवन जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चित मंजन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, या कर्मा की इतनी हमारे ऊपर छाया आगी है कि जैसे सूर्य ऊपर होता है बादल नीचे छाए हैं, चांदना है लेकिन वो नहीं है, जब बादल हट जाएंगे उसके बाद रोशनी होगी। तो ऐसे प्रेम की पवन करे चित मंदन फिर झलके तेज नारे, तो वो परमात्मा का जो हम पाप कति हमारे समाप्त हो जाएंगे, अंतःकरण में मलिनता नहीं रहेगी, फिर खुली आंखें आपको वो सच्चा दरबार देख सकते हो। लेकिन अब मान ले हम भारत देखना राष्ट्रपति भवन ने, या उस कार्यालय को देख ले दूर, तो जो पूरे आओ दफ्तर, और वहां हमने कोई नौकरी मिला नहीं, हमने वहां स्थान मिला नहीं, तो वो देखना भी व्यर्थ है। अगर हमें अपॉइंटमेंट हमारी हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए उस तब ऑफिस में हमारी अपॉइंटमेंट करवा दे, तब जब देखने में आनंद है, फिर देखें भी और वो पैसा भी मिला जिसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो ऐसा कोई संत मिले आपको वहां अपॉइंट करवा दे, उस परमात्मा के दरबार में आपको स्थान दिवा दे, तो वो देखने का फायदा है ना। दूर तो देखा हुआ राष्ट्रपति भवन की लाइट ने क्या फायदा हुआ भाई। तो ये बनावटी काम है, ना किसी महापुरुष ने यह हठ योग किया, ना आदरणीय रविदास साहेब जी ने अपने जूते बनाया करते, भक्ति करते, सुमन का नाम सुमन करते थे। आदरणीय नानक साहेब जी अपना नौकरी भी करते थे और भजन जाप भी करते थे। फिर नौकरी के बाद त्यागने के बाद परमात्मा मिल गए थे, उसके बाद अपने खेतों में रहा करते थे और अपनी भक्ति करते थे और खेती भी करते थे। ऐसे आदमी गरीबदास साहेब जी खेती भी करते थे और नाम का स्मरण भी करते थे, कभी हठ योग और ये कान दाग के ना बैठे। और परमात्मा स्वयं भी एक लीला करने आए थे, कपड़ा भी बुनते थे और सुमन करण की लीला भी करते थे। वो भी बताते थे, देखो भाई मैं तेन और सुमन करता हूँ, कपड़ा भी बुनता हूँ और सुमन भी करता हूँ, नाम भी जाप करता हूँ। तो इसलिए हर संत ने जिन्होंने परमात्मा पाया उन्होंने हठ योग को नकारा किया है। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, साधो मनसो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे, इन नैना न लख लखावे, कान ना रुंदे आंख ना मुंदे, ना आनंद उलझावे, सतगुरु जो सहज समाज बतावे, संतो मुझे सो सतगुरु मन भावे। हमने तो वो संत चाहिए, वो सतगुरु चाहिए जो ना तो कान बंद करके इसमें आनंद में उड़ जावे और ना ये कान रुंदे ना आंख मुंदे, ये तो पाखंड करवाने वाली बात। अगर आप अपने कुछ निश्चय करना चाहते हो तो करके देख सकते हो, एक घंटा रोज प्रयत्न करो कान बंद करके, शाम के समय जब कुछ सो दे जनता 10-11-12 बजे सी उठ के और ऐसे कान दबा के देखना, ये अंगूठा थे न्यू, ये काना के जो ढक्कन से इनको ऊपर ला देना और एक घंटा अभ्यास करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत सांस ज्यादा नहीं रोकना, तो कुछ पहले तो आपको यहाँ छोटी छोटी आवाजें आएंगी, घंटी सी बाजती सुनेंगी, फिर वो बढ़ती वो कम हो जाएंगी, आगे ऊपर की नजर आएंगी और फिर एक ऐसी न्यारी सी एक आवाज आएगी। और लेकिन ये जब होंगी, जब आप ही की पूर्व की कमाई होगी, या इस ये दो तरीके से सुनती है, या तो पहले की कमाई होगी और या इस जन्म में आपका जो वास्तविक मंत्र है इसकी जब कमाई थोड़ी बहुत हो लेगी, पहले की ना होगी। तो जिन्होंने कति मंत्र ना ले रखे वो भी सुन सकते हैं इसको, और जिन्होंने नाम ले लिया उसके बाद भी सुनेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप कभी देखा करो आंखों को ऐसे करके, आपको ऐसे तार से नजर आओगे, ऐसे स्प्रिंग से गोल गोल से टिकारी सी काली, पहले कम थी मुझे इस दास को बचपन से दिखा करती, थोड़ी सी दिखती थी वह, मैं सोचा करता मेरी आंख खराब है कि तो ये कम दिखा है मैंने, ये कोई डिफेक्ट है, दृष्टि दोष है। तो जब ये सतगुरु के चरणों में आया तो ये और गणी होगी, तब सतगुरु से प्रार्थना करी, गुरुदेव ये मेरी आंखें खराब हैं या कुछ ऐसे दिखे, तो उन्होंने बताइए तो बेटा तेरी कमाई है। वो बोला जी तो मुझे बचपन में भी दिखा करती, कहने लगे तो पिछले दिन उनका संस्कारी था और जब यह सत भक्ति ना मिलती थी ये जो पहले तुझे दिखती थी खत्म हो जानी थी तेरे लास्ट के जीवन तक, क्योंकि वो पिछली कमाई थी वह तेरी, अब इसको देखने से भी कोई लाभ नहीं और ना देखे तो भी कोई बुरा, देखे जब भी कोई बुरा नहीं और ना देखे तो भी, देखे तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि जैसे आपने बैंक में 10 लाख रुपए जमा करा दिए या 2 लाख जमा करा रखे, अब उस कॉपी ने आप रोज देख लो और चाहे ना देख लो, अगर और मेहनत करोगे उसमें बैंक में डालते रहोगे तो गुजारा होगा, नहीं तो वो 2 साल में वो 2 लाख भी खत्म हो जाएंगे। अगर और आगे की तैयारी नहीं मिली आपको और फिर आप उसमें डिपॉजिट करो, मेहनत करो, पैसा बचे बैंक में डालते रहो, फिर देखो, फिर देखने में भी आनंद है, देखो तो देखो ना देखो तो मत देखो, डिपॉजिट तेरा हो रहा है डालने जाओ जी, जब मनमाना जब कभी देख लियो जाके। तो ये दो तरीके की कहानी है। अब ये हमने बहुत दिखाई देती है, कई बार तो ऐसी लगती है जैसे कोई मच्छर आ गया आके, और बिना गिनती की होगी, पहले जरा सी थी, अब जितनी कहते हैं जेता अंदर आंज ये चश्मों में दिखंत, जितनी भी तो कमाई करेगा तेरे आगे दर देगा भगवान, ये तेरी कमाई तेरे सामने। अब ये कई संतों ने ये महकमा खोल रखा है, कहा ये 2 मिनट में भगवान दिखा दो भाई, कैसे दिखाते हैं कि देख ये दिखा ध्यान यहाँ लगा थोड़ी देर देखो ना 2 फुट की दूरी पे, और फिर आंखों को ऐसे 1/2 घंटा मतलब 5-7 मिनट तो आंखों को बंद ही नहीं करना, ऐसे देखता रहे चाहे आंखों पानी भी गिरे, तो फिर कुछ देर के बाद वो पुरानी जो पहले की कमाई होगी वह फिर उसके बाद थोड़ी बहुत झलक दिखने लग जाएगी, ले भाई ये है भगवान, बस भाई कूदता हो गया भगवान। नाम क्या है उसका, नाम तो भगवान का कोई होता है क्या, बस भगवान तेरे को बता दिया, गुटी लाचे दारू पी बीड़ी पी कुछ कर, भगवान पे तो निर्लेप है, वो कूदता अंडा कई नो का हमने देखता है कोई ना, उस गुरु जी तरह आपने देखा, तो उनकी कमाई पिछली है नहीं और जिनकी थी वो देखेगी, वो कूदते अंडर आ गए, कमाई का कोई मंत्र मिला नहीं तो वो कुछ दिन हुआ देखनी भी बंद हो जाएगी, वो कति खत्म हो जाएंगे। तो ये गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लागे फिर जड़ नहीं जाए। तो ये हमने देखना नहीं है, देखना चाहो तो बुरा नहीं है, अपना दृढ़ विश्वास करने के लिए सचमुच ये है तुम्हारी कमाई तो देख सकते हो। आप सुबह के समय सूर्य की तरफ पीठ करके बैठ जाइए और छाया में बैठ जाइए, या छाया में बैठ जाइए जैसे सुबह सुबह 10-11 बजे से पहले पहले, और आप जिस तरफ छाया जैसे मकान की छाया में बैठे हो और प्रकाश थोड़ी दूरी पर है, भीत की द्वार की तरफ कमर करके सामने देखना और 2 फुट की दूरी पर ध्यान से देखना, एकटक 2 मिनट आपके सामने चांद टूटते दिखेंगे। जैसे जौ होते तिल होते हैं ना, तिल आधा चंद्रमा, चंद्रमा जो आधा होता है आपने देखा होगा चांद, और उस चावल जितने से भी छोटे आपकी आंखें आंखा गिनो जलमल जलमल शुरू हो जाए, बिना गिनती के इतना क्षेत्र सफेद हो जाएगा, तो वो आप ही की पूर्व की कमाई या अब इस जन्म की कमाई। लेकिन ये भगवान नहीं है, ये प्रकाश परमात्मा नहीं है, ये तो राम नाम की कमाई थे, सच्चे नाम की कमाई थे, उस स्थान को सथाई स्थान मिलेगा और यहां से छुटकारा होगा और कोई तरीका नहीं। तो ये कई प्रकार से इन नकली संतों ने जीव को उड़ा दिया। ये तो पंसारी है एक हल्दी की गांठ लेकर, एक हल्दी की गांठ वाले पंसारी है सारे, इनको ना कह का बेरा ना खे का बेरा, जिसने जो थोड़ी बहुत की तहते सुराग मिल गया उसने लेकर भाग लिया, आजा मैं बता दो भगवान, आजा मैं भगवान बता दो, आजा मैं गुरु बन गया। अरे बेकूफ, गुरु बनना कोई बड़का खेल नहीं है, ये इतना बड़ा भार अपने सिर पर रखना, एक जीव को गुमराह कर देना, इसे अनमोल जीवन को बर्बाद कर देना, इससे बड़ा दुश्मन इस पृथ्वी पर इस जीव का नहीं है जो इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। अभी आपको पता को ना कितना हानि हो रही है अपने को, और जब इस जीव को ज्ञान होगा फिर उन संतों से अप किनारा कर लेंगे, उनकी शक्ल भी ना देखेंगे, ये तो वो महात्मा दिखाई देते हैं, क्योंकि हम बालक हैं, हमने तो सांप भी एक बढ़िया चीज दिखे। जब हम इसलिए दास का प्रयत्न है कि एक बार हम स्वयं परिचित हो जाएं, दास ये चाहता है कि आपको मजौरी बना दूं ताकि तुम आप रिजेक्ट कर दो, नहीं वो संत ठीक नहीं, उनका ज्ञान ठीक नहीं। संत मतलब वो व्यक्तिगत बुरा नहीं है, हमने संत से द्वेष या किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं करना, हमने उसके मार्ग को रिजेक्ट करके उससे उल्टा हट जाना, बस इतना ही काम संत का होता है। अब आपको हम परिचित कर रहे हैं, आप अपने आप फैसला करने लग जाओगे भी वाकई वो तो गलत रास्ता था। एक समय दो सेठ थे, बड़े वाले का जो है छोटे वाला भाई मर जाता है, उसके 2 पुत्र, तो उनकी मां ने कहा बेटा तुम नादान बच्चे हो, 16-17-18 साल के, व्यापार तुम कर नहीं सकते, पिता तुम्हारा रहा नहीं, अपने ताऊ जी से तुम पार्टनरशिप कर लो, और बेटा मेरे पास पैसे तो हैं कोनी, ये लाल रखे तेरे पिता के समय के, ये लाल ले जाओ, ताऊ जी को दे दो कि गिरवी रख लें, चाहे किसी तरह प्रयोग कर ले, इनको पैसे होंगे तो छुटवा लेंगे। दोनों बच्चे उन माँ के दिए हुए लालों को लेकर के कोटड़ी ने ताऊ जी के पास गए, ताऊ जी हमारे मेरी माँ ने ऐसे ऐसे कहा है, हम आपके साथ कुछ दिन बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे हमारे पास है नहीं, ये लाल दिए मेरी माँ ने, आप ये गिरवी रख लो फिर छुटवा लेंगे। अब सेठ ने वहां खोली पोटड़ी, वो परीक्षा था पता था, उसने उल्टी बांध के दे दी, बेटा ये तो बहुत कीमती चीज है, ले जा तेरी माँ ने कह दे, चौकस रख ले, संभाल के रख लेगी, और विदेश में मेरा जो है ना उधार चलती है, और आप मेरे साथ हिस्सा कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। उन बच्चों को वो लेकर गया दूसरे शहर में, वहां उन बच्चों के हाथों से लालों का आदान प्रदान करवा दिया। एक समय जानबूझ कर लालड़ी दे दी लाल के स्थान पे, और कहा बेटा उस सेठ को देकर आओ ये लाल, जिससे 50,000 का सौदा लिया था कल, उसको कहना कि हम ये हमारा लाल गिरवी रख ले सेठ जी, वापसी आएंगे जब तेरा पैसे दे देंगे, अपना लाल ले लेंगे। दोनों बच्चे गए। सेठ से कहा, सेठ जी ताऊ जी ने ऐसे कहा है, ये 50,000 रुपए के बदले में एक लाल रख लो हमारा, और आएंगे जब अपना लाल छुड़वा लेंगे तेरे पैसे दे देंगे। अब उस सेठ ने जौहरी बुलवाया, जौहरी ने देखा कि ये तो लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है सेठ जी, ये तो 200 रुपए की भी कोने, लाल तो 9 करोड़ का होता है, 9 लाख का होता है, पर 9 लाख बताया करते। तो उसने सेठ ने बार मारा गली में पटक कर, कहन गया तेरा ताऊ जी तो एक भाई ठग हो गया, ठगे है 50,000 पर जाके दे दी रहे, तो अच्छा आदमी लग गया करता, ये लाल है नहीं है, लालड़ी लालड़ी है, देख ये 200 रुपए की भी कोई ना, लाल तो 9 लाख का होता है। अब वो दोनों बच्चे उठाकर उस लालड़ी ने और लाल ने वापिस आकर माड़ा मोड़ कर रखा, ढीला उठ छोड़ रखे, मायूस हो रहे। ताऊ जी को तो पता था उस सेठ को, सेठ ने पूछा बेटा क्या बात होगी, कहने लगे ताऊ जी लाला जी बहुत निकम्मा आदमी, वो तो इस लाल को बाहर पटक दिया, एक आदमी बुलाया उन्हें, बोला लाल को ना लालड़ी है या, और गली में फेंक दिया, और ने बोला तेरा ताऊ जी तो ठग हो गए, 50,000 रुपए जाके दे दी है, इब हमने लाल धोखे देने लग गया हो, इधर लालड़ी है, लालड़ी 200 रुपए की भी कोई ना। तो सेठ को तो पता ही था, ओहो बेटा वो सेठ गलत नहीं है, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, पुत्र मेरे से गलती बन गई, ये तो लाल बेटा यहाँ रखा था देख रहे है तेरे की, मैं तो भूल गया भाई, ये लालड़ी दे दी धोखे से, ले बेटा ये है लाल जा दे आओ इब वापिस जाओ, और प्रार्थना करके आना, सेठ जी धोखा ला गया, ताऊ जी का नहीं था बेटा, अपना व्यापार खराब हो जाएगा, व्यवहार बिगड़ जाएगा, कोई पैसा उधारा नहीं देगा अपने को, अभी जाओ। दोनों भाई फिर गए और जाके कहा सेठ जी हमारे ताऊ जी का धोखा लग गया, ये लाल इधर रखा था और वो धोखे से लालड़ी दे दी, ये देखो। वो फिर जोरी बुलाया, जोरी देखते कहा हाँ देख बेटा ये है वो लाल, इसको कहते हैं लाल, इसकी कीमत है। अब उन बच्चों ने भी इतना झटका लग गया, वो दोनों लाल और लालड़ी की दृढ़ परीक्षा होगी, कति हृदय में बैठ गई, ओ हो तो दिन रात का अंतर है। वापस आ गए, सेठ ने कहा जा बेटा अपनी माँ पे वो लाल ले आओ, और बेटा बहुत कर्जा हो गया, शेर हो गया, उधार हो गई है, और यहाँ किसी को ले दे कर उधार जमा करा चलेंगे, पैसे ले चलेंगे, उनका कर्जा तारेंगे। दोनों पुत्र दोनों बच्चे गए, माँ माँ कहा बेटा आ जाओ आगे, तो माँ हाँ माँ आगे आज रोटी खा लो, पच्चा खाना खाएंगे पहले, वो लाल दे ताऊ जी पे बहुत उधार होगी है, लाल दे कर आते हैं, ले बेटा जो के तो रखे तुम्हारे, ये ले जाओ लाल। अब दोनों बच्चों ने सोचा यही देखना ये लाल है कि लालड़ी, अब दोनों ने वहां खोल कर देखा, उनका माथा ठनका, वो तो लालड़ी थी सारी, लाल नहीं था एक भी। तब कहने लगे माँ आप तो कति बोड़ी बाड़ी हो, माँ ये लाल को ना लालड़ी है, ये तो 200 रुपए की है, कोई ना लाल तो बहुत कीमती होता है। माँ बोली बेटा मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिता के समय के रखे थे, और भाई मन तो सोचा लाल होंगे, अब माँ ये तो लालड़ी है, उड़े पटक दिया उन बच्चों ने, ताऊ के पास गई, ताऊ को तो पता था, उस सेठ को पता था। दोनों बच्चे गए मायूस सा मुख रखा, कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ ना कति बोली बाड़ी है, शादी सी है बेरा को बेचारी ने, ताऊजी तो लाल को ना लालड़ी है। तब उस सेठ ने कहा बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, अगर मैं कह देता ना ये लालड़ी है लाल को ना, तेरी माँ कहो मेरा पति कोई ना हमारे धनी सिर पर नहीं है, हमारे लालों को भी लालड़ी बता दिया, हमारे साथ धोखा कर दिया तेरे ताऊ ने, तो बेटा ये लालड़ी उस दिन भी थी, आज तुमने स्वयं पर कर दी, आप पर करने योग्य हो गए, मैं दोषी ना रहा, आपने फैसला कर दिया, तेरी माँ की आंखें खा गई। तो अब दास ये चाहता है कि प्रोजेक्टर पर दिखा दिखा कर ये रह रहकर वो पता आपको ज्ञान बांट कर आपको पारखू बना दूं, ताकि इन संतों को आप ही रिजेक्ट कर दो, मुझे घना प्रयत्न ना करना पड़े। यही दास का प्रयत्न सफल हो रहा है, और बहुत बुद्धिजीवी प्राणी इसको समझ रहे हैं और समर्पण कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, कहां मध्य प्रदेश से राय महीने आना और कहां पुणे से हर महीने आना, ये भगवान इनके बेड़े पार हुआ करें, कोई बड़का का खेल नहीं, क्यों वो वैसे ही बिना करे कोई काम हो जाएगा, किसी भी कार्य को करने के लिए समर्पण चाहिए, और समर्पण बिना परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, और ये काम तो करें पार पड़ेगी, इस जन्म में कर लो या फिर कभी सूत बैठ योगा पर्यंत। दास कहते समझ में यही आई थी कि यो अगर ये मनुष्य से छूट गया भगवान ना मेरा कित पटक दे ठाक उसमें बांग्लादेश में राम नाम का जकर कोई ना नरी मछली खानी। हे भगवान बड़ी दया करी मेरे प्रभु, ऐसा अनमोल ऐसा अक्षेत्र ये भारतवर्ष का, ये क्षेत्र भारतवर्ष का जो युगों युगों से विश्वविद्यालय रहा है आध्यात्मिक मार्ग का, लेकिन आज नकली संतों ने अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को ना जान करके नकली ज्ञान प्रचार कर दिया और कंगाल कर दिया, अपने को भक्तिहीन बना दिया और एक दूसरे के दुश्मन हो गया, ना जाने कितने की मजहब बना दिए। जब हम परिचित हो जाएंगे तो हमने ना कोई मजहब दिखाई देगा, हमने अपने हम सब एक ही प्रिजन, हम एक ही कैद में सारे कैदी नजर आओगे। परमात्मा कहते हैं एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेर बे गरीब दास सत नाम भजन बिन, सतपुरुष भजन बिन सभी काल की जेल बे। चाहे स्वर्ग में ये महादेवता हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे यहाँ पृथ्वी पर रंग और कीड़े मकोड़े हैं, ये सब काल की जेल के अंदर है। पुण्य किए स्वर्ग में चले गए, वहां देवता बन गए, फिर 84 माह के गधे बन गए, ये सब रह है जेल की जेल और यहाँ से पीछा छूटेगा जब हम सत भक्ति करेंगे पूर्ण संत की शरण में। बोलो सतगुरुदेव की, करूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुड़ाम, कुत्ता तेरे दरे बार का मतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रसी जाखें चो भाजाऊं, तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो रख तो ही रहूं जो देव सुख। अब गुण किए तो बहु किए करतन मनिहार, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन तार, अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपोत हूँ गौर पिता कुलाज, मैं अपराधी जन्म का नक्षक बरे विकार, तुम दाता दुख बंदना मेरी करो सवार, जय अब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरो कहूं जो कहनी हो, गुरु जी आप न बोलियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना, तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव वरंच मुनि नारदा तिनके हरदन समान, सुरत करो मम साईया हम हैं बव जल माई, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाण। कबीर ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु गोविंद दोनों खड़ी काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद कर जानियो चलियो आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को तीन लोक भैना। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में अग काल के फंदे। गुरु को मानुष जोगिने करे चरण अमृत को पानी, ते नर नरक में जावेंगे भुगते चारों खान। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारी, हरी हरी कर रह गए गुरु भज हो पारे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दानी, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराने। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के बेधनी गुरु आगे अधीन। कबीर गुरु के बिना लाग्या हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिए सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर किन्नी हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाल, आद अंत मद सोधिया दूजा देख्या ख्याल। कहता हूँ कही जात हूँ सुनता है सब को, ए भाई समरण से बोला होएगा नहीं तो भला ना हो। बंदे तू कर बंदगी जचावे दीनारे, अवसर मानुष जन्म का ये मिले न बारंबार। न नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपने निज घर और निज ज्ञान का वर्णन स्वयं ही करते हैं, अपने पाने की विधि आप ही बताते हैं, पर हम बालक गने हैं, हम बहुत ज्यादा नादान बच्चे होंगे भक्ति मार्ग में। परमात्मा यहां आए उसे हम पहचान नहीं सके और स्वयं जैसे बच्चे लुका छिप्पी खेलते हैं और कहते हैं बालक जाकर के कोने में दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता छोटा सा, ये स्वयं ही बोल रहे हैं हम स्वयं बालक थे, हम विश्वास नहीं कर पाए सचमुच ये प्रभु है। इतना साधारण सा उसको पाना जो उन्होंने स्वयं मेथड बताया है, विधि बताई है, वो बहुत ही आसान है।